मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 11 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे उत्तर लिखने की चुनौती के बारे में कुछ बातें करूंगा और आपको ध्यान होगा कि 2 सप्ताह पहले मैंने इस विषय पर बात करने का आप सबसे वायदा किया था, लेकिन इस बीच में घटनाएं कुछ इस तरह की इम्पॉर्टेंट घटित होती चली गई कि मैं इस विषय को उठा पाने की स्थिति में नहीं रहा। इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, मैं इस विषय पर बात करूंगा, आज बात करूंगा और इसे मैं कल भी उठाऊंगा, यानी कि लगातार 2 दिनों तक हम इसी विषय पर बात करेंगे ताकि कंटिन्यूएशन में आप इस विषय को एक दूसरे से जोड़कर समझ सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो रियल चैलेंज है, इनफैक्ट जो लास्ट चैलेंज है, जो आपको रिजल्ट देगा, वह अंततः उत्तर लिखने की चुनौती है, उत्तर लिखने की चुनौती या उत्तर देने की चुनौती। मेंस में आप लिखकर उत्तर देते हैं और इंटरव्यू में आप आमने सामने बैठकर बोलकर उत्तर देते हैं। जो सारा कमाल है वो तो केवल उत्तर देने का ही है। और आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, किताबों पर किताबें पढ़े जा रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप सही उत्तर दे सके, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर, दूसरों से बेहतर उत्तर दे सके। आप सोच करके देखिए, आप आखिर में इसी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर हम आज और कल जितना भी संभव हो सकेगा विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। बात की शुरुआत मैं अपने रामजस कॉलेज के एक अनुभव से करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, पिछले महीने रामजस कॉलेज में मेरा लेक्चर था, जो नई दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसमें स्टूडेंट्स आए, मुझे इस बात की खुशी है कि जो हॉल था वो भरा हुआ था और स्टूडेंट बल्कि खड़े थे। उनमें थोड़ी सी बेचैनी भी मैं देख रहा था कि खड़े होने से जो एक अव्यवस्था तो नहीं कहूंगा, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही अनुशासित तरीके से थे, लेकिन जो लोग खड़े होते हैं, चूंकि मैं बैठा रहता हूं तो थोड़ी सी तकलीफ सी होती है कि काश ये भी बैठ पाते, लेकिन खैर चलिए। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो जो रामजस कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर धनी राम जी, उन्होंने उसकी शुरुआत एक प्रश्न से की। इनफैक्ट उन्होंने मेरी किताब जो आप आईएएस कैसे बनेंगे का भाग एक है, उसे उन्होंने पढ़ा था और उस भाग एक के पहले ही चैप्टर में मैंने एक प्रश्न किया है आप उन सब स्टूडेंट्स से जो आईएएस बनना चाहते हैं, बनने के लिए सोच रहे हैं और बनने की तैयारी में लग गए हैं। उनसे मैंने प्रश्न किया है कि आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप आईएएस बन सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मुझे बहुत सारे मेल भी मिले हैं। जो भी स्टूडेंट किताब पढ़ते हैं उसमें से कुछ पूछ अपनी तरफ से उत्तर दे देते हैं कि सर मेरा ये उत्तर है इसके बारे में। तो डॉक्टर धनीराम जी ने इसी उत्तर से शुरुआत की, कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको ताज्जुब होगा मित्रों, और मुझे ये बताने में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि उन्होंने 9 स्टूडेंट्स से ये प्रश्न पूछे, 9 स्टूडेंट्स से। और ये बहुत दुख की बात है कि उसमें से केवल 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सही उत्तर दिए और इन 2 में से भी 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसने परफेक्ट उत्तर दिया। देखिए, दोनों में फर्क है, परफेक्ट उत्तर और सही उत्तर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में चलो पेपर थोड़े से खराब हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, 1 साल हमारा बर्बाद होने से बच जाएगा। नहीं, यहां तो अगर आप दूसरे की तुलना में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी तक की तो चली गई, या फिर आप अगले साल फिर अपीयर होइए। नो डाउट कि आपने जो तैयारी की है वो बर्बाद नहीं हुई है, वो आपके अगले साल काम आएगी, लेकिन आप अगर दूसरों से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि दूसरे आपसे बेहतर कर ले रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि आप फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 2 उत्तर, 9 में से 2 उत्तर केवल सही थे और उसमें 1 ही उत्तर परफेक्ट था। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और गहराई से समझिएगा, क्योंकि जो उत्तर लिखने की जो चुनौती है, याद रखिए, उसकी जो शुरुआत होती है उत्तर प्रश्न को समझने से ही होती है। देखिए, जब आप प्रश्न को ही सही नहीं समझेंगे तो उत्तर सही कैसे देंगे? आपको दिशा तो मालूम होनी चाहिए ना। अगर आप चलने की शुरुआत कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जो आपका डेस्टिनेशन है वो पूर्व दिशा की ओर है, और पता लगा कि आप अपने पॉइंट से साउथ की ओर चल देते हैं, दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? किसी और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां आप पहुंचना चाह रहे थे वहां तो आप नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आपने डायरेक्शन ही गलत चुन लिया। तो अगर आप प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपने गलत दिशा का चुनाव कर लिया है, तो आप गलत जगह पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अब आप देखिए कि जो उत्तर मिल रहे थे तो किस तरीके के उत्तर मिल रहे थे। कोई कह रहा था कि सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कोई कह रहा है कि सर मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बन सकता हूं। कोई उत्तर दे रहा था कि सर ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं आईएएस बनूं और मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूं। ये सारे उत्तर पर आप गौर कीजिएगा। सामान्य तरीके से सुनेंगे तो आपकी पकड़ में कुछ भी नहीं आएगा कि इनफैक्ट मैं बताना क्या चाह रहा हूं, फिर तो आपको लगेगा कि सर ने 15 मिनट तक ऐसे ही समय बर्बाद कर दिए। यही बारीकी आपके काम आएंगी। इस तरह की बारीकियों को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, दोस्तों दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहां क्या होगा, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि यहां कुछ नहीं होगा। आपको इन बारीकियों को समझना होगा। तो इस तरह की बातें स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे। केवल दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ सही उत्तर देने की कोशिश की। उसमें एक स्टूडेंट बहुत परफेक्ट था, जिसने उत्तर में अपने कहा कि सर मैंने सिविल सर्विस के सिलेबस देखा है, सिविल सर्विस के मेरे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, और उनको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरी पकड़ की चीज है और ऐसा मैं कर सकता हूं। ये परफेक्ट आंसर था, जिसे मैंने परफेक्ट आंसर कहा। अब आप देखें कि आप में आत्मविश्वास है कि मैं आईएएस कर सकता हूं, तो ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा सही हो सकता है कि भाई मेरे अंदर कम से कम एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दूसरे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी आत्मविश्वास है तभी तो कर रहे हैं। अब यह बात अलग है कि वो आत्मविश्वास कितना सही है, कितना थोथा है, कितना गलत है, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तो उनमें भी है। लेकिन ये कह रहा है कि जो मैं कर सकता हूं, तो आत्मविश्वास को उसने बिल्कुल तार्किक तौर पर हासिल किया है। वो बकायदे सिलेबस देख रहा है, वो बकायदे अनसॉल्व पेपर देख रहा है। सिलेबस से ही बात नहीं, अनसॉल्व पेपर भी देख रहा है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये मेरी कुछ समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पकड़ में है या नहीं है, और उसके आधार पर उसको लगा कि नहीं यार, ये तो मैं कर सकता हूं। अब ये बात अलग है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो भविष्य बताएगा। लेकिन इनफैक्ट उसने जो आईएएस की तैयारी करने का निर्णय लिया है, तो उसके इस निर्णय की जो नींव है वो बहुत ही ठोस जमीन पर है, चट्टान पर है। और ऐसे ही लोग सही मायने में आगे कुछ कर भी पाते हैं, जो कि बड़े तार्किक रूप से सोचते हैं और बहुत ठोस तरीके से विचार करते हैं और अपनी तैयारी की नींव भी बहुत ठोस रूप में रखते हैं। अब आप बताइए कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, ये आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी उद्दाम इच्छा हो सकती है, आपकी बर्निंग डिजायर हो सकती है, लेकिन इस समाज सेवा करने का क्या संबंध आपकी क्षमता से है? यहां मेरी इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि आपको अपने अंदर ऐसा क्या लगा कि आपको लगता है कि मैं आईएएस बन सकता हूं, तो मैं आपकी क्षमता के बारे में पूछ रहा हूं ना। और किस क्षमता के बारे में पूछ रहा हूं? पहलवानी की क्षमता के बारे में नहीं कि मैं WWW जीत जाऊंगा कि नहीं, आईएएस बनने। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आईएएस बनने के लिए किन किन तरह की क्षमताओं की जरूरत होती है। कोई कहता कि सर मेरा एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। कोई ये कह सकता था कि सर शुरू से मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, एजुकेशन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है, मेरी पकड़ है इन विषयों पर। कोई ये कह सकता है कि मैं तो पिछले 5-7 साल से तैयारी करता आ रहा हूं और इस स्टेज पर आकर के मुझे लगता है कि मेरी तैयारी राइट ट्रैक पर है और मैं इसे कर सकता हूं। तो ये उत्तर आपकी क्षमताओं को बता रहे हैं। इच्छाओं को नहीं, मैंने इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा है कि आपकी इच्छा क्यों है कि आप आईएएस बने, मैंने ऐसा तो नहीं पूछा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपको अपने दिए गए उत्तर की जांच करनी है कि यह सही उत्तर है या नहीं, तो इसका तो बहुत ही सरल सा उपाय है। और सरल सा उपाय क्या हो सकता है? सरल सा उपाय यह है कि जो आपने उत्तर दिया है उस उत्तर को लिख लीजिए या किसी को सुना दीजिए और फिर उससे कहिए कि भैया मैंने जो तुमको उत्तर सुनाया है या जो मैंने ये उत्तर लिखा है इसे थोड़ा सा पढ़ो और इस उत्तर के आधार पर प्रश्न तैयार करो कि ये जो मैंने उत्तर दिया है ये किस प्रश्न के जवाब में दिया है, तुम जरा इसका प्रश्न तैयार कर दो। तो देखिए अगर वह जो प्रश्न तैयार करता है वह पूछे गए प्रश्न के बिल्कुल पैरेलल है तो आप मान करके चलिए कि आपका उत्तर परफेक्ट है, और अगर वो उससे मैच नहीं खा रहा है तो सीधी सी बात है कि पूछा कुछ गया है और आप उत्तर कुछ दे रहे हैं। पूछा क्षमता के बारे में है गया है और आप अपनी इच्छा के बारे में बता रहे हैं, आप अपने सपने के बारे में बता रहे हैं कि बचपन से मेरा सपना था। अरे सपना तो पता नहीं किन किन चीजों का है। अरे भाई आपको समाज सेवा करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो समाज के लिए केवल आईएएस बनकर के नहीं किया जा सकता, उसके करने के तो बहुत से रास्ते हैं, तो उसका क्षमता से कहां संबंध हो गया। दोस्तों बीच बीच में मैं इसी दौर में टोक करके स्टूडेंट्स को करेक्ट भी करता जा रहा था, और इस तरीके से आप ये कह लीजिए कि एक एक्सरसाइज हो रही थी कि सही उत्तर की तलाश कैसे की जाती है, कैसे आप किसी प्रश्न को सुनने के बाद सबसे पहले तो उस प्रश्न की जो आत्मा है, जो सार है, जो तत्व है, जो जीवन है, या कह लीजिए जो प्राण है, उस प्राण को पकड़ेंगे। हर प्रश्न का एक केंद्र होता है, आप उसे न्यूक्लियस कह सकते हैं, आप उसे प्राण कह सकते हैं। वो प्राण आपकी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो केंद्र आपके पकड़ में नहीं आया तो फिर होगा क्या कि आप जो उसका पेरिफेरी वाला जो एरिया है, जो उसकी परिधि है, उस परिधि में भटकने लगेंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो परिधि को केंद्र समझ लेते हैं और जब तक वो शुरुआत परिधि से चलने की केंद्र की ओर करते हैं, जबकि उत्तर लिखने में आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो केंद्र से परिधि की ओर होनी चाहिए। उनकी जो यात्रा होती है वो उल्टी होती है, हालांकि वो पहुंच तो जाते हैं वहां तक, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका सब कुछ चूक चुका होता है, शब्दों की सीमाएं चूक चुकी होती हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जामिनर का धैर्य चूक चुका होता है। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि नहीं, स्टूडेंट की पकड़ में चीजें नहीं आई हैं, बस थोड़ा थोड़ा आभास मिल गया है कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, अच्छा अच्छा इस तरह का पूछा जा रहा है, तो ठीक है फिर तो मैं अगर इस तरीके का लिख दूं तो बात बन जाएगी। और वह यही कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर बहुत ही मेच्योर पर्सन होता है, सोच करके देखिए वो शुरू से यही काम कर रहा है, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट होगा। वो आपके एक पैरा को पढ़ने के बाद ही समझ लेता है कि आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई है, परिधि से केंद्र की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। और जैसे ही वो आपके एक पैरा को पढ़ता है मित्रों, उसके दिमाग में आपके स्तर की इमेज तैयार हो जाती है कि आप किस स्तर के स्टूडेंट होंगे, जिसे मेरी समस्या अगर मैं इस भाषा में कहूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लव एट फर्स्ट साइट, है ना, कि पहले ही नजर में प्यार। तो वो पहले ही नजर में आपका मूल्यांकन कर लेता है कि ये स्टूडेंट किस तरीके का है, किस स्तर का है, और अगर उसको लगता है कि नहीं स्टूडेंट का स्तर अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि इस उसके दिमाग में जो आपके प्रति धारणा बन गई है ये मार्किंग में जबरदस्त रूप से काम करती है, और तब फिर वह उसी नजरिए से आपके उत्तरों को पढ़ता है। ऐसा नहीं कि वो बायस्ड हो जाता है। अगर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी इमेज अच्छी नहीं बनी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक से जो इमेज बन गई है वो हर में उसी इमेज को लेकर के चलेगा, नॉट एट ऑल। हर क्वेश्चन के साथ आपकी इमेज चेंज होती रहती है और आपकी इमेज का जो क्रिएशन है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ से हो जाता है, और उनकी नजर इतनी तेज होती है कि जब सेकेंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में पहुंचते हैं तो बीच में अगर वो कहीं भी नजर डाल लेंगे उसको देखने के बाद ही अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भटक चुके हैं, एकदम पता लग जाता है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि मैं भी थोड़ा मोड़ा एग्जामिनर रहा हूं, इस तरह का अनुभव मेरे पास भी है, मुझे भी इस तरह के काम करने के अवसर मिले हैं, तो मैं जानता हूं। एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि एग्जामिनर के आत्मा का है या उनके दिमागी संरचना का थोड़ा सा फर्स्ट हैंड अनुभव मेरे पास भी है और उसी बात को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मित्रों, आज मैं ज्यादा बातें तो आपको कुछ नहीं बता सका हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा मैंने बहुत विस्तार के साथ आपसे की है ताकि मेरी बातों पर आप थोड़ा सा विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, और वह यह कि उत्तर लिखने की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह होती है प्रश्न को समझने की चुनौती। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।